नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।